संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में।
भगवान आत्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा ये है कि जितने भी ये संयोग हैं, शरीर से लेकर स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव, इस आत्मा ने इन सब में अपनापन स्थापित कर रखा है। और ये संयोग तो नियम से वियोग को प्राप्त होते हैं, तो इसे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा ही नाश हो रहा है, जैसे कि मैं लुटा जा रहा हूँ। इसकी वजह से वो अनंत दुखी होता है, अनंत आकुलता उसके चित्त में पैदा होती है। अनित्य भावना के चिंतन से ये आकुलता कम हो सकती है, क्योंकि ये विचार करें कि ये सारे संयोग हैं, ये अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, इनका तो ये स्वभाव ही है। यदि हम इस बात को सहजता से स्वीकार कर सकें तो ही सुखी हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, प्रातःकाल सूरज उगता है, उसे देखकर कोई बहुत बहुत खुश हो, अंदर से प्रफुल्लित हो जाए, नाचने गाने लगे, कूदने लगे, तो शाम को जब सूरज अस्त होगा तो जितना सुबह उसे आनंद हुआ है उतना ही दुख शाम को होगा, क्योंकि सूरज ना उसके कारण उगा है, ना उसके लिए उगा है, ना उसका उसके साथ कोई संबंध है। सूरज की प्रणति से तेरा कोई संबंध नहीं है, तेरे से सूरज की प्रणति का संबंध नहीं है। वो अपनी गति से आता है, अपनी गति से जाता है, प्रातः काल उगता है और शाम को अस्त होता है। तूने उसे अपना मानकर, अपने लिए मानकर, अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानकर, उसके संयोग में तू आनंदित हुआ तो उसके वियोग में भी गारंटी से उतना ही दुख होने वाला है। अब कल्पना कीजिए कि शाम को डूबते हुए सूरज को देखकर कोई आदमी रोने लगे, चिल्लाने लगे, बहुत दुखी होने लग जाए, आकुलता व्याकुल हो जाए, तो उसको दुख दूर करने का क्या उपाय है? एक उपाय तो ये है कि हम सूरज को डूबने से रोक दें, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि सूरज के चलने में, उगने डूबने में हमारा कोई योगदान नहीं है, किसी का नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि उसे रोक दे और कि उसे उगा दे। ये बिल्कुल असंभव बात है, लेकिन हमारा सारा प्रयत्न इसी दिशा में है। भले ही सूरज को रोकने के लिए आपने आज तक कोई प्रयत्न नहीं किया हो, लेकिन ऐसे ही तो सारे संयोग हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद शरीर, ये भी सूरज के अस्त होने के समान इनका भी अस्त होने का काल आता है ना, और उनको रोकने का तो हम पूरा प्रयत्न करते ही है ना, तो वो सारे प्रयत्न सूरज को रोकने जैसे ही हैं। शास्त्रों में एक कथानक आता है कि जब सात महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर कर मार डाला, और ये समाचार जब अर्जुन ने सुना तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए, उनका विवेक कुंठित हो गया, और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जिस दैत्य ने उसको मारा है, सूरज अस्त होने के पहले मैं उसे मार डालूंगा, और यदि मैंने उसे नहीं मार पाया तो मैं स्वयं अग्नि में जलकर मर जाऊंगा। ये इतिहास प्रसिद्ध घटना है, पुराणों में लिखी है, सब जानते हैं। फिर क्या हुआ वो भी सब बातें प्रसिद्ध हैं फिर, लेकिन थोड़ा हम विचार करें। जैनियों के यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि वो सूरज जब अस्त होने लग गया और जयद्रथ को नहीं मार पाया क्योंकि वो छिप गया था, तो कुछ ऐसा किया गया देवताओं के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से कि एकदम अंधेरा हो गया, बादल ने सूरज को ढक लिया और उसे भ्रम हो गया कि सूरज अस्त हो गया है, रात हो गई, और वो बाहर निकल आया और अर्जुन ने उसे मार डाला। हमारे वैष्णव भाइयों के यहाँ दूसरी बात कही है, वो कहते हैं कि उन्होंने सूरज को रोक दिया था एक घंटे के लिए, समझ लीजिए, नहीं डूबने दिया था। कुछ भी हुआ हो, एक ही घंटे को क्यों रोका, मैं कहता हूं जब भी रोक ही सकते थे तो वे अनंत काल के रोक देते। वस्तु स्थिति तो यही है कि उसे एक सेकंड भी आज तक कोई रोक नहीं सका है, किसी भगवान में भी ये ताकत नहीं है। जैन दर्शन तो यही कहता है, महावीर तो यही कहते हैं, लेकिन अब बहुत अपन जाए उन तक भी तो यही तो हुआ कि टेम्परेरी घंटे दो घंटे के लिए कुछ हो सकता है, परमानेंट तो नहीं रोक सकता। और जो रोक सकता होता कोई भगवान तो उसे रोक दिया होता आज तक उसने। तो ये जो असंभव का उपाय है जो भगवान से भी संभव नहीं हुआ, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हर संयोग को हम रोकने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा था एक उपाय तो ये है कि सूरज को डूबते हुए देखकर वो जो दुखी हो रहा है उसके लिए हम सूरज को रोक दें, जो कि असंभव है। और दूसरा उपाय ये है सीधा सरल सच्चा कि हम उसे समझा दें, वो इस बात को समझ ले कि भाई ये तो सूरज का स्वभाव है, सुबह उगना शाम को अस्त होना, अब अस्त हो गया है तो सुबह उग जाएगा, सुबह फिर उगेगा, शाम को फिर अस्त होगा, इसमें कोई चेंज संभव नहीं है, इसलिए उसमें उगने पर कोई खुशी मनाने की बात नहीं है और अस्त होने पर कोई दुख शोक करने की बात नहीं है। और ये बात समझकर उसका चित्त शांत हो जाए तो हो जाए, और ना हो तो नहीं हो, और कोई उपाय है ही नहीं। एक ही उपाय है, एक हो ये तृण काल में परमारथनो, ये बात हमें स्वीकार करनी ही पड़ेगी। बुद्ध भगवान के बारे में भी एक उदाहरण आता है कि एक महिला का एकलौता बेटा मर गया तो उसकी लाश को लेकर वो माँ बुद्ध भगवान के चरण पास पहुंची, उनके चरणों में रखती हुई बोली कि मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े महान संत हैं, आप इस मेरे बेटे को जिंदा कर दी। उन्होंने बहुत समझाया लेकिन वो माँ मानने को तैयार ही नहीं हुई और ये कहने लगी कि तुम कर तो सकते हो और मेरे कुछ काम तुम्हें करना नहीं है, इसलिए बहाना बनाते हो, धर्म का उपदेश देते हो कि कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि लोगों के दिमाग में जमा है कि भगवान नाम का जो प्राणी है वो सर्वशक्तिमान होता है, वो सब कर सकता है। तो भगवान भी वे इस बात को कहें कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तो भगत उनकी और सब बात मानने को तैयार है, लेकिन वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपनी एक आप कुछ भी कहू कहानी में भी इसी तत्व को उजागर करने की कोशिश की है। आखिर बुद्ध भगवान परेशान हो गए और उन्हें ये कहना पड़ा उससे कि ठीक है मैं तेरे बेटे को जिंदा कर दूंगा। मानते तो यह है कि नहीं कर सकता हूं, अभी तक यही समझाते रहे कि नहीं कर सकता हूं, है ना, लेकिन ये बालक है, महिला है, इनकी हट के सामने अच्छे अच्छों को परास्त होना पड़ता है। तो उनने भी कहा कि अच्छा, समझाने का एक नया तरीका खोजा कि जब तक मैं इससे ये बात कहूंगा कि मैं बचा नहीं सकता हूं, तब तक ये बात मेरी सुनने को ही तैयार नहीं है, तो एक दफे मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं बचा सकता हूं और बचा लूंगा। तब ये बात मेरी सुनेंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बता लूंगा, सिर्फ एक काम तेरे को करना है कि तू जाकर एक मुट्ठी चना किसी के घर से मांग के ले आ। तो वो एकदम दौड़ के भागने लगी तो कहने नहीं बहन एक बात सुन के जा, ये बात का ध्यान रखना कि वो चने तू उस घर से लाना कि जिस घर में कभी कोई मरा नहीं हो। उन्होंने कहा ठीक है और भाग गई। उसने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि आदमी को अपनी इच्छा की पूर्ति का, खासकर बेटे को बचाने जैसी इच्छा की पूर्ति का कोई आश्वासन दे तो वो कितना भी बड़ा काम करने को कहे वो कभी इनकार नहीं कर सकता। वो सोच भी नहीं सकता कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। एक एक घर में गई, हर एक से कहा मुझे बहन दो मुट्ठी चने चाहिए। तो हर एक ने कहा चार मुट्ठी ले जाओ। लेकिन जब वो देने लगी तो उसने पूछा कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है कि क्या बताएं कि अगले साल ही तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ है। ऐसे 25 घर के उसने चक्कर काटे, लेकिन ऐसा कोई एक घर नहीं मिला कि जिनका निकट भूतकाल में जिस घर में कोई ना कोई नहीं मरा था। आखिर परेशान होकर वो लौट कर बुद्ध के पास आई और बोली कि महाराज मुझे तो कोई ऐसा घर मिला ही नहीं जिसमें कोई मरा नहीं हो, इसलिए मैं चने नहीं ला सकती हूं, आपको तो बिना चनों के ही बचाना पड़ेगा। तो उनने समझाया बहन कोई घर ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि हर आदमी घर में जब कोई मरण के निकट पहुंच जाता है या मर जाता है तो हर आदमी पूरी ताकत से उसे बचाने की कोशिश करता है। यदि दुनिया में कोई बचाने वाला होता, बचा सकता होता, क्यों तो एकाध घर तो ऐसा मिल जाता, भगवान के घर ही जाके देख लो ना, क्यों जब एक भी घर नहीं है इसका मतलब यह है कि आज तक किसी आदमी ने किसी को मरते को नहीं बचाया। मरते को नहीं बचाया तो मरे हुए को कौन बचाए। अब उस बुद्धि माँ की ये बात समझ में आई। कहने का अर्थ यह है कि ये पर्याय अनित्य हैं, संयोग क्षण भंगुर हैं। एक ऐसा परम सत्य है कि जिसको स्वीकार किए बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है सुखी होने का। इसके विरुद्ध हम इन पर्यायों की क्षण भंगुरता को रोकने का कितना ही प्रयत्न करें वो न आज तक कभी सफल हुआ है और न भविष्य में कभी सफल होगा। ये हमारे चित्त में एक दफे परम सत्य आ जाए, इसलिए बार बार इस बारह भावना के चिंतन में उन्होंने अनित्य भावना में संयोगों की, पर्यायों की क्षणभंगुरता और नियम से नाश को प्राप्त होगी इस बात की चर्चा से ही बात आरंभ की। क्योंकि ये बात समझे बिना इस व्यक्ति का चित्त ही शांत नहीं होता है कि जिससे वो तत्व की बात सुन भी सके। जब हम ये बात कहते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हमने तो सुना है कि ज्ञानी धर्मात्मा भी ये बारह भावनाओं का पाठ करते हैं, तो क्या वे ज्ञानी धर्मात्मा भी ये नहीं समझते हैं कि सब कुछ अनित्य है, तो उन्हें क्यों बार बार इस बात को सोचने की जरूरत है। नक्की हो गया उनको तो कि वे ऐसा सोचें, चिंतन करें। और मुनिराज भी बारह भावनाओं का चिंतन करते हैं, तो जिन्होंने सब घर बार परिवार छोड़ दिया है, नन्द गंबर दशा होकर बाहर निकल गए हैं, क्या वो भी ये बात नहीं समझते हैं कि सब कुछ क्षणभंगुर है, किसी को मरते से रोका नहीं जा सकता है। अकेले मरने की बात नहीं है भाई साहब, जगत में जो भी परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को भी नहीं रोका जा सकता है, वो तो जानते हैं। तो फिर उन्हें इस बात के चिंतन करने की क्या जरूरत है। वो मानते भी हैं, जानते भी हैं, उन्हें पक्का भरोसा भी है। ये बात है कि पक्का भरोसा होने पर भी जिन संयोगों से राग है, ज्ञानियों के भी राग तो होता है ना, शास्त्रीय भाषा में बात करें तो अनंतानंदी राग नहीं होता, लेकिन आप प्रत्याकरण संबंधी राग तो होता है ना, ये जानते हुए भी एक इच्छा तो उनके रह सकती है ना कि इनका वियोग नहीं हो। साधु संतों में भी गुरु शिष्य होते हैं तो शिष्यों को ये भावना रहती है कि गुरुओं की छत्र छाया हमें जिंदगी भर प्राप्त रहे, उनका वियोग नहीं हो। और कोई जवान बहुत होशियार शिष्य हो और उसका वियोग हो तो गुरुजी भी तड़प जाते हैं। कहने का अर्थ है कि ऐसा पक्का श्रद्धान होने पर भी राग देश के जोर से, चारित्र मोह के जोर से, दर्शन मोह नहीं है, उनके भी ये विकल्प खड़े होते हैं। इसलिए उन विकल्पों को समन करने के लिए उन्हें भी दिन्ना रात इसका चिंतन करना पड़ता है, करना चाहिए। और एक बात और भी है कि चिंतन दो प्रकार से होता है, ये मार्मिक बात है, समझने शांति है, समझने जैसी बात है कि एक तो किसी को की बात को समझने के लिए चिंतन किया जाता है कि ये बात कैसी है, ऐसी है कि नहीं है, वो तो सत्य की खोज संबंधी चिंतन है, वो तो समझो तत्संबंधी अज्ञान की दशा में होता है, क्योंकि अभी कोई निर्णय नहीं है और हमें निर्णय करना है। लेकिन जब हम किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं और हमारा विषय पूरी तरह चिंतित हो जाता है, हम डिसीजन कर लेते हैं, तो उसके बाद भी उसकी रुचि के कारण वो विषय बार बार हमारे चिंतन में आता है। पहले हम उसका चिंतन करते हैं और बाद में वो सहज भाव से हमारे चिंतन का विषय बनता है, क्योंकि उस समय प्रेम हो गया ना, उस सिद्धांत से हमें अपनापन हो गया ना, उसकी सच्चाई से हम प्रभावित हो गए ना, उसकी महिमा हमारे चित्त में बस गई ना, तो वो उसका निष्प्रयोजन भी, हमें कोई ऐसी आकुलता नहीं भी हो, तो भी वो चिंतन हमारे चित्त में सदा बनता रहता है। और जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक वर्तमान में कोई आकुलता ना दिखाई दे तो भी वो चिंतन रहता है कि उसके कारण भविष्य में आकुलता नहीं होती है। देखो, बीमारियों का इलाज दो तरह से माना गया है आजकल खासकर, कि एक तो जब बीमारी हो जाए तो उसके लिए उसका क्या इलाज करना, ये बीमारी के होने के बाद का इलाज है, और एक कि उस टाइप की बीमारी हमें या किसी को होए नहीं उसको पहले से ही उसका इलाज करना। और आज ये दूसरे नंबर का इलाज विश्व में सबसे ज्यादा महत्व रखने लग गया है, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है ना, उसकी ये ड्यूटी हो गई है कि वो बीमारियां फैले नहीं, बीमारियां बढ़े नहीं, उसका इंतजाम वो पहले से करे। बीमारी हो जाने वाले का इलाज तो वो करती ही है, और वो ना करे तो प्राइवेट डॉक्टर भी कर सकते हैं, वैद्य कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर और वैद्य ये नहीं करें नगर की सफाई कराने लाए और किसी हलवाई को खुला भोजन बेचने की अनुमति नहीं दें, किसी खोमचे वाले को ढक्के नहीं भेजे, पैक बंद भोजन ही भेजने दें, ये कोई प्राइवेट डॉक्टर नहीं कर सकता। ये सब क्या है, ये वो इलाज है कि जिससे कोई बीमारी हो ही नहीं। तो भले ही उनको आकुलता और दुख नहीं है अभी ज्ञानी धर्मात्माओं को मुनिराजों को, लेकिन उसकी संभावना तो है क्योंकि अभी पूर्ण वितरागी नहीं हुए हैं, तो वो होए नहीं इसके लिए भी ये चिंतन किया जाता है। तो किसी का कोई मर गया हो तो उसे दुख होगा तो वो ये चिंतन करे बारह भावना, क्यों अभी हमारे तो कोई मरा ही नहीं, हम काय को बारे भावना पड़े। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम हो गया है, बारे भावनाएं पड़ी जा रही हूं, समाधि मैन पड़ा जा रहा हो तो हमको लगता है कि यहां कोई मर गया है। जैसे राम नाम सत्य है, अरे कितनी बढ़िया बात है, लेकिन यदि सड़क पर कोई आदमी ऐसा बोलता जाते हो तो राम नाम सत्य है, वास्तविक सत्य है, उस सत्य की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, कोई मर गया है ऐसा हमारा ध्यान, कोई चीजें किसी चीज से जुड़ जाती है। ऐसे हमारे समाधि मैन पाथ, ये वैराग्य भावनाएं, ये बारह भावनाएं कुछ ऐसी जुड़ गई हैं कि जिससे हमको ये लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ अनर्थ घटित हो गया है। अरे भाई, अनर्थ घटित ना भी हो तो भी इनका चिंतन जरूरी है, होते रहना चाहिए कि जिससे वो जब अनर्थ घटेगा तब हमारा चित्त आकुलित नहीं होगा, ये उसकी पूर्व तैयारी है। इसलिए बारह भावनाएं तत्व को समझने के लिए भी चिंतन की जाती हैं, समझने के बाद भी चिंतन की जाती हैं, राग द्वेष कम करने के लिए भी चिंतन किया जाता है, और वो हमारा प्रिय विषय हो जाने से सहज भाव से भी वैसा चिंतन चलने लगता है। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी गृहस्थ साधु ये सब के लिए अत्यंत उपयोगी और आवश्यक चिंतन है। क्या चिंतन की बात अपनी चल रही थी कि जगत में प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है, ये मरण भी परिणमन का ही एक रूप है। वस्तु स्थिति ऐसी थोड़ी है कि हम 60-70 वर्ष बाद एक दिन मरते हैं, हम जाके बारीकी से जाके देखें तो हम रोजाना ही मरते रहते हैं। पूजन में तो आप सुनते ही हैं, क्यों भाव मरण और भाव कर्म सदियों से करता आया हूं। मैंने भी ये कविता लिखी थी, उसमें लिखा था कि हम निशदिन मरते रहते हैं, हम 24 घंटा मरते रहते हैं। जो बच्चा अभी पैदा हुआ और मान लीजिए 80 वर्ष तक उसे जिंदा रहना है, तो वो 80 वर्ष एक दिन में खत्म थोड़ी हो जाएंगे कि वो मर जाएगा, वो एक एक पल पल करके 80 वर्ष पूरे होंगे ना। तो वास्तव में वो प्रतिपल मर रहा है, मृत्यु की तरफ दौड़ रहा है बहुत तेजी से। हम निशदिन मरते रहते हैं, पल पल करके छिन छिन करके दिन रात गुजरते रहते हैं, हम निशदिन मरते रहते हैं, एक पल एक एक क्षण एक एक क्षण। वो भी एक छोटा मरण ही है, मरण की तरफ हम दौड़ रहे हैं, वो भी एक छोटा मरण ही है। ये हमारे शरीर में निरंतर परिवर्तन हो रहा है ना, संयोग में एक काले से बाल सफेद हो गए, ये एक दिन में हो गए कि हम शाम को सोए थे तो काले थे और सुबह उठे तो एकदम सारे सफेद थे, ऐसा हुआ है क्या? बोलिए क्यों, आध घंटे पहले सब काले थे और आध घंटे में सब सफेद हो गए, सोगानी जी ऐसा हुआ है क्या? हाँ, नाई की दुकान पर ऐसा हो सकता है कि आध घंटे पहले जो सफेद थे वो काले हो जाए, लेकिन वो नेचुरल काले नहीं होंगे। क्यों? ये जो नेचुरल काले से सफेद हुए हैं वो तो पल पल करके छिन छिन करके हुए हैं, हैं? वो एक एक दिन सफेदी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक दिन सफेदी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो निरंतरता की जो मृत्यु है, यदि हम उसे समझ लें तो एक दिन की जो बड़ी मृत्यु है जिसे हम मौत समझते हैं, जिसे हम घबराते हैं, उसका भय हमें दूर हो जाएगा। अब हम निरंतर ही मर रहे हैं तो फिर इस तथ्य पर हमें विचार करना पड़ेगा कि निरंतर ही रोते रहें क्या, और हम इस तथ्य यहां लेंगे कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये आत्मा के अहित में नहीं है, हित में है, इतना निर्णय हो जाए तो हमारी जीवन में शांति आ सकती है। इसलिए हमें एक बार इसका सच्चा और पक्का निर्णय अवश्य करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।